प्राकल्पना के प्रकार अंडर ब्रैकेट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए प्राकल्पनाओं हाइपोथेसिस के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसे कई प्रकारों टाइप्स में बांटा जा सकता है। शोध विशेषज्ञों रिसर्च एक्सपर्ट्स ने प्राकल्पना हाइपोथेसिस का वर्गीकरण निम्नांकित 3 आधारों पर किया है। अ, चरों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मनोविज्ञान ने प्राकल्पना का सबसे सरल वर्गीकरण प्राकल्पना में निहित चरों वेरिएबल्स के आधार पर किया है। इस कसौटी पर प्राकल्पना हाइपोथेसिस के मुख्य 2 प्रकार बतलाए गए हैं। एक, साधारण प्राकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस। साधारण प्राकल्पना वैसी प्राकल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों वेरिएबल्स की संख्या मात्र 2 होती है और सिर्फ इन्हीं 2 चरों के संबंध द्वारा शोध समस्या का एक प्रस्तावित उत्तर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, बच्चे की बुद्धि तथा वर्ग उपलब्धि में धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इस प्राकल्पना में 2 चर हैं, अर्थात बुद्धि, इंटेलिजेंस तथा वर्ग उपलब्धि, क्लासरूम अचीवमेंट, जिनके बीच एक खास संबंध की चर्चा की गई है। अतः यह एक साधारण प्राकल्पना अंडर ब्रैकेट सिंपल हाइपोथीसिस का उदाहरण है। 2, जटिल प्राकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथीसिस। जटिल प्राकल्पना वैसी प्राकल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक होती है और उनमें एक खास संबंध बतलाकर शोध समस्या का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। जैसे अंडर डबल इन्वर्टेड कोमा, शहर के उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में धूम्रपान करने की प्रवृत्ति देहात के मध्यम अंडर ब्रैकेट मिडिल सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस प्राकल्पना में 3 चर हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर अंडर ब्रैकेट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, धूम्रपान की प्रवृत्ति स्मोकिंग टेंडेंसी तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्र अर्बन रूरल रीजन। इन 3 चरों वेरिएबल्स में विशेष प्रकार का संबंध बतलाकर जिस प्राकल्पना का उल्लेख किया गया है वह निश्चित रूप से एक जटिल प्राकल्पना का उदाहरण है। ब, चरों में विशेष संबंध के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। कुछ शोध विशेषज्ञों रिसर्च एक्सपर्ट्स ने प्राकल्पना का वर्गीकरण चरों के विशिष्ट संबंधों के आधार पर किया है। जैसे मैक ग्यूगन 1990 ने इस कसौटी के आधार पर प्राकल्पना के मुख्य 2 प्रकार बतलाए हैं जो निम्नांकित है। एक, सार्वत्रिक प्राकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस तरह के प्राकल्पना का स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है जो निहित चरों के सभी तरह के मानों वैल्यूज के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है। जैसे अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, मानव को सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार तथा प्रशंसा द्वारा तेजी से होती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एक ऐसी प्राकल्पना का उदाहरण है जिसमें बतलाया गया संबंध तथा प्रशंसा द्वारा तेजी से होती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एक ऐसी प्राकल्पना का उदाहरण है जिसमें बतलाया गया संबंध हर परिस्थिति में हर समय प्रत्येक मानव पर लागू होता है, परंतु मानव में चूंकि जीव ऑर्गेनिज्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और चूंकि व्यवहारों में विभिन्नता होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इस तरह की सार्वत्रिक प्राकल्पना की सीमा बंधी हुई होती है। जैसे उपयुक्त प्राकल्पना को ही ले लिया जाए, यह प्राकल्पना सामान्य मानव नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो ठीक है, परंतु असामान्य मानव के लिए कहाँ तक उतना ही उपयुक्त एप्रोप्रिएट होगा कहना मुश्किल होगा। अतः व्यवहारों में विभिन्नता के कारण सार्वत्रिक प्राकल्पना अपने आप ही एक सीमा में बंध जाती है। 2, अस्तित्वात्मक प्राकल्पना, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। वैसी प्राकल्पना को कहा जाता है जो सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। जैसे यदि यह प्राकल्पना विकसित की जाती है कि वर्ग में कम से कम एक छात्र तो ऐसा है जिसमें सीखने की प्रक्रिया दंड देने से तेजी से होती है, तो यह एक अस्तित्वात्मक प्राकल्पना एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस का उदाहरण होगा। इस ढंग की प्राकल्पना के साथ एक दोष यह बतलाया गया है कि यदि वह जांच के बाद सही पाई जाती है तो उसका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता है और इस तरह से आगे की समस्या शोधकर्ता के लिए बनी ही रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता एक नहीं बल्कि कई अस्तित्वात्मक प्रकल्पनाओं की जांच करता है और तब कहीं जाकर वह सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करने की अवस्था में पहुंच पाता है। विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, शोध के विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पस के आधार पर शोध मनोवैज्ञानिकों ने प्रकल्पना हाइपोथेसिस को निम्नांकित 5 भागों में बांटा है। एक, कारणत्व प्रकल्पना कॉजल हाइपोथेसिस, व्यवहार के कारणों को नियंत्रित करने तथा उसकी व्याख्या के उद्देश्य के मद्देनजर शोधकर्ता कारणत्व प्रकल्पना का निर्माण करते हैं। कारणत्व प्रकल्पना एक ऐसी प्रकल्पना होती है जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। उदाहरण स्वरूप, शोधकर्ता यह प्रकल्पना कर सकता है कि थकान से अधिगम में ह्रास होता है, तो वह कर्णत्व प्रकल्पना का उदाहरण होगा क्योंकि उसमें अधिगम में ह्रास होने वाले का कारण थकान बताया गया है। हालांकि अधिगम में ह्रास होने का कारण मात्र थकान ही नहीं है। दो, वर्णात्मक प्रकल्पना डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, व्यवहार के बारे में पूर्व कथन प्रिडिक्शन तथा उसका वर्णन करने के ख्याल से शोधकर्ता वर्णात्मक प्रकल्पना डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। वर्णात्मक प्रकल्पना वैसे प्रकल्पना को कहा जाता है जो व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या उस परिस्थिति जिसमें वह होता है के रूप में करता है। इस तरह का प्रकल्पना शोधकर्ता को व्यवहार के गुणों की पहचान करने में मदद करता है और उसे पूर्व कथन करने में भी मदद करता है। इस ढंग के प्रकल्पना की सबसे मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें व्यवहार के कारण की पहचान करने पर बल नहीं डाला जाता है। इसे यह एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए शोधकर्ता यह प्रकल्पना करता है कि थकान में व्यक्ति में आगे कार्य करने की अनिच्छा होती है, तो वह वर्णात्मक प्रकल्पना का उदाहरण होगा क्योंकि इसमें थकान में होने वाले व्यवहार का मात्र वर्णन किया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज। तीन, शोध प्रकल्पना या कार्यरूप प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस। शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस से तात्पर्य वैसी प्रकल्पना से होता है जो किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत स्पेसिफिक थ्योरी से निकाली गई अनुमति पर आधारित होती है। शोधकर्ता इस विश्वास के साथ इस तरह की प्रकल्पना का प्रतिपादन करता है कि वह यथार्थ एक्यूरेट है क्योंकि वह एक सिद्धांत पर आधारित होता है। शोधकर्ता की तमन्ना यही रहती है कि शोध के परिणाम रिजल्ट्स द्वारा उसकी शोध प्रकल्पना की संपुष्टि कन्फर्मेशन हो जाए। हालांकि कभी कभी उसकी यह तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है। शोध प्रकल्पना को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। सीखने का एक प्रमुख सिद्धांत सूझ सिद्धांत अंडर ब्रैकेट इनसाइट थियरी है। यदि इस पर आधारित करके कोई शोधकर्ता यह प्रकल्पना हाइपोथेसिस बनाता है कि अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न तथा भूल अंडर ब्रैकेट ट्रायल एंड एरर की अपेक्षा जल्दी सीखता है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, पर्सन लर्न्स बाय इनसाइट क्विकर देन बाय ट्रायल एंड एरर, तो यह एक शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस का उदाहरण होगा। शोध प्रकल्पना के संक्रियात्मक अभिव्यक्ति ऑपरेशनल स्टेटमेंट ही वैकल्पिक प्रकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। शोध प्रकल्पना की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन दो ढंग से की जा सकती है, दिशात्मक अभिव्यक्ति डायरेक्शनल एक्सप्रेशन तथा अदिशात्मक अभिव्यक्ति नॉन डायरेक्शनल एक्सप्रेशन। उदाहरण स्वरूप, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता व्यक्तियों के दो समूहों में बुद्धि में अंतर का अध्ययन करना चाहता है, जिसके लिए वह शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस इस तरह बनाता है, समूह अ समूह ब से बुद्धि में श्रेष्ठ सुपीरियर है। इस शोध प्रकल्पना के लिए वह वैकल्पिक प्रकल्पना नल हाइपोथेसिस दो तरह से तैयार कर सकता है, समूह अ तथा समूह ब की बुद्धि एक समान है या समूह ब बुद्धि में समूह अ से श्रेष्ठ है या समूह अ बुद्धि में समूह ब से श्रेष्ठ है। पहली प्रकल्पना अदिशात्मक ढंग से नॉन डायरेक्शनल वे से अभिव्यक्त की गई है क्योंकि इसमें समूह अ तथा समूह ब में अंतर की कोई दिशा का उल्लेख नहीं है, परंतु दूसरी प्रकल्पना दिशात्मक ढंग से अभिव्यक्त की गई है क्योंकि इसमें समूह अ तथा ब के अंतर में एक दिशा पर बल डाला गया है। पैराग्राफ चेंज। चार, नल प्रकल्पना नल हाइपोथेसिस। नल प्रकल्पना नल हाइपोथेसिस शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस के ठीक विपरीत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह एक तरह से उल्लेखित चरों के बीच प्रभाव नहीं प्राकल्पना अंडर ब्रैकेट हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट होती है। दूसरे शब्दों में नल प्राकल्पना वह प्राकल्पना है जिसके द्वारा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। शोधकर्ता जब कोई शोध प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस बनाता है तो साथ ही साथ ठीक उसके विपरीत ढंग से नल प्राकल्पना नल हाइपोथेसिस भी बना लेता है और उसकी तमन्ना यही रहती है कि शोध के परिणाम द्वारा नल प्राकल्पना अस्वीकृत रिजेक्ट हो जाए ताकि वह विश्वास के साथ शोध प्राकल्पना को स्वीकृत एक्सेप्ट करके उस दिशा में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके। जैसे उपयुक्त एवं शोध प्राकल्पना के लिए नल प्राकल्पना इस प्रकार होगी। व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न तथा भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है, डबल इंपर्टेड कॉमा क्लोज। यदि शोध के परिणाम द्वारा यह अस्वीकृत रिजेक्ट हो जाता है तो स्वतः उसका विपरीत यानी शोध प्राकल्पना को यथार्थ मान लिया जाता है। यही कारण है कि नल प्राकल्पना को एक काल्पनिक मॉडल हाइपोथेटिकल मॉडल माना गया है क्योंकि उसका अस्तित्व वास्तविक रूप से तो होता नहीं है। पैराग्राफ चेंज 5 सांख्यिकी प्राकल्पना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सांख्यिकीय प्राकल्पना से तात्पर्य वैसी प्राकल्पना से होता है जिसमें सांख्यिकीय जीव संख्या पॉपुलेशंस के बारे में विशेष संबंध की उक्ति होती है तथा जिसे शोधकर्ता अपने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करना चाहता है। ब्लैक तथा चैंपियन अंडर ब्रैकेट ब्लैक एंड चैंपियन 1976 ब्रैकेट क्लोज के शब्दों में सांख्यिकीय प्राकल्पना सांख्यिकीय जीव संख्या के बारे में वैसा कथन होता है जिसे प्रेक्षित आंकड़ों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर समर्थन दिया जाता है या खंडन किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सांख्यिकीय प्राकल्पना का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक है कि सांख्यिकीय जीव संख्या स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का तात्पर्य समझा जाए। सांख्यिकीय जीव संख्या एक ऐसी जीव संख्या है जो व्यक्तियों को भी हो सकती है या कुछ चीज़ों थिंग्स की भी हो सकती है। सांख्यिकीय जीव संख्या स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तियों या चीज़ों के बारे में किए गए प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशंस को संख्यात्मक मात्राओं न्यूमेरिकल क्वांटिटीज में बदल दिया जाता है और तब उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाता है। अब एक उदाहरण लें। मान लिया जाए कि शोधकर्ता समूह अ तथा समूह ब में उम्र अंतरों एज डिफरेंसेस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए वह शोध प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस इस प्रकार विकसित कर सकता है। समूह अ समूह ब से प्रौड ओल्डर है। इस शोध प्राकल्पना को सांख्यिकीय प्राकल्पना में बदलने के लिए पहले शोधकर्ता को समूह अ के सभी व्यक्तियों के उम्र का माध्य ज्ञात करना होगा तथा उसी ढंग से समूह ब के सभी व्यक्तियों की उम्र का माध्य मीन ज्ञात करना होगा। इसके बाद इन दोनों शब्द माध्यों अंडर ब्रैकेट मीन्स की तुलना कर इस तथ्य पर पहुंचा जाएगा कि दोनों माध्यों में कौन बड़ा है और किस समूह को प्रौड ओल्डर माना जाएगा। इस तरह से स्पष्ट है कि सांख्यिकीय प्राकल्पना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस शोध प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस का ही सांख्यिकीय पदों स्टैटिस्टिकल टर्म्स में एक परिवर्तित रूप को कहा जाता है। सांख्यिकीय प्राकल्पना में सिर्फ शोध प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस को ही नहीं बल्कि नल प्राकल्पना नल हाइपोथेसिस को भी सांख्यिकीय पदों स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बदल दिया जाता है। जब शोध प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस तथा नल प्राकल्पना नल हाइपोथेसिस को सांख्यिकीय प्राकल्पना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के रूप में व्यक्त किया जाता है तो विशेष संकेत सिंबल का प्रयोग किया जाता है। शोध प्राकल्पना के लिए H तथा नल प्राकल्पना के लिए HO का संकेत प्रयोग किया जाता है तथा माध्य मीन के लिए X प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज यदि शोध प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस यह है कि समूह अ समूह ब से प्रौड ओल्डर है तो इसकी सांख्यिकीय प्राकल्पना के रूप में एच ओ तथा एच वन की अभिव्यक्ति निम्न प्रकार से की जाती है, एच ओ कोलन एक्स ए स्पष्ट हुआ कि H1 है समूह अ का माध्य उम्र मीन एज समूह ब के माध्य उम्र से अधिक है तथा HO है समूह अ का माध्य उस समूह ब के माध्य उम्र के बराबर है या कम है, परंतु यदि शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस यह है कि समूह अ तथा समूह ब के उम्र में अंतर है तो इसे ये प्रकल्पना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के रूप में बदलने पर एच ओ तथा एच वन की अभिव्यक्ति अलग हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एच ओ तथा एच वन निम्न प्रकार से होगी। फॉर्मूला स्पष्ट है कि एच वन है समूह अ का माध्य उम्र अंडर ब्रैकेट मीन एज समूह ब के माध्य उम्र के बराबर नहीं है तथा एच ओ है समूह अ का माध्य उस समूह ब के माध्य उम्र के बराबर है। इस तरह से हम देखते हैं कि शोध विशेषज्ञों रिसर्च एक्सपर्ट्स ने शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कई ढंगों से करके उसके स्वरूप की व्याख्या करने की कोशिश की है। प्रकल्पना के कार्य फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। समाज वैज्ञानिकों सोशल साइंटिस्ट ने प्रकल्पना के तीन महत्वपूर्ण कार्य फंक्शंस बतलाए हैं जो निम्नांकित हैं। एक, सिद्धांतों की जांच करना, टू टेस्ट थियरीज। शोध विशेषज्ञों का मत है कि प्रकल्पना द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांतों की जांच टेस्ट आसानी से होती है। मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट अक्सर किसी घटना फिनोमिनन की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत थियरी का विकास करते हैं और इसके बाद वे कुछ तरीकों मींस द्वारा उसकी सत्यता की जांच करते हैं। उनके सामने सबसे उत्तम तथा सीधा तरीका उस सिद्धांत से एक या एक से अधिक प्रकल्पना हाइपोथेसिस निर्गत करना होता है और बाद में उस प्रकल्पना की सत्यता की जांच की जाती है। यदि प्रकल्पना यथार्थ साबित हुई तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वह सिद्धांत जिससे प्रकल्पना निर्गत की गई थी सही है। यदि प्रकल्पना यथार्थ साबित नहीं हुई तो सिद्धांत का खंडन कर दिया जाता है और उसे अवैज्ञानिक घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से स्पष्ट है कि प्रकल्पना का एक संपूर्ण कार्य सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना है। इस अर्थ में प्रकल्पना की एक वैकल्पिक परिभाषा अंडर ब्रैकेट अल्टरनेटिव डेफिनेशन ब्रैकेट क्लोज देते हुए कहा जाता है कि प्रकल्पना जांचनीय रूप में सिद्धांत का एक कथन होता है। अंडर ब्रैकेट हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ थियरी इन टेस्टेबल फॉर्म ब्रैकेट क्लोज। दो, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, टू सजेस्ट अ न्यू थियरी। सामान्यतः शोध में हम सिद्धांतों के आधार पर प्रकल्पना बनाते हैं, परंतु कभी कभी प्रक्रिया इसके विपरीत हो जाती है। इसमें हम विभिन्न प्रकल्पनाओं को एक साथ मिलाकर एक सिद्धांत को जन्म देते हैं। अतः प्रकल्पना हाइपोथेसिस का एक कार्य फंक्शन यह भी है कि हम इसके आधार पर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को यह विश्वास के साथ पता होता है कि अमुक घटना फेनोमिनन का क्या कारण हो सकता है, अतः ऐसी परिस्थिति में वह किसी सिद्धांत की पृष्ठभूमि के लिए इंतजार नहीं करता है और प्रकल्पना हाइपोथेसिस बना लेता है। प्रकल्पना सत्य साबित होने पर फिर अपनी पूर्व कल्पनाओं अजम्पशंस परिभाषाओं तथा संप्रत्ययों कॉन्सेप्ट्स को वह एक तार्किक तंत्र लॉजिकल सिस्टम में बांध देता है जिसे हम सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। पैराग्राफ चेंज तीन, किसी घटना का वर्णन करना, टू डिस्क्राइब अ फेनोमिनन। प्रकल्पना द्वारा वर्णात्मक कार्य डिस्क्रिप्टिव फंक्शंस भी किए जाते हैं। जब किसी प्रकल्पना की आनुभविक जांच एम्पिरिकल टेस्ट की जाती है तो यह निश्चित रूप से उन घटनाओं फेनोमेनन के बारे में एक निश्चित सूचना देती है जिससे वह संबंधित होती है। इस सूचना के आधार पर संबंधित घटना का संतोषजनक वर्णन करना आसान हो जाता है। अनुभविक जांच के बाद यदि प्रकल्पना का खंडन रिफ्यूट भी हो जाता है तो इसके आधार पर शोधकर्ता को संबंधित घटना के बारे में एक दूसरे ढंग की सूचना मिल जाती है जिससे कि वह कुछ सीखता है और घटना के वर्णन को एक नया रूप देता है। इन प्रधान कार्यों के अलावा प्रकल्पना द्वारा कुछ सहायक कार्य अंडर ब्रैकेट सेकेंडरी फंक्शंस ब्रैकेट क्लोज्ड भी किए जाते हैं, जैसे प्रकल्पनाओं की जांच कर शैक्षणिक विधियों टीचिंग मेथड्स में सुधार किया जा सकता है, विभिन्न तरह की सामाजिक समस्याओं सोशल प्रॉब्लम्स के संबंध समाधान के नए तरीकों को ढूंढा जा सकता है, अपराधियों के व्यवहारों में सुधार लाया जा सकता है तथा एक नई सामाजिक नीति सोशल पॉलिसी की घोषणा की जा सकती है। अध्याय सारांश चैप्टर समरी। एक शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस से तात्पर्य शोध समस्या के लिए किए गए प्रस्तावित अंतरिम कथन प्रपोज टेंटेटिव स्टेटमेंट से होता है। इससे दो या दो से अधिक चरों के बीच एक खास संबंध रिलेशनशिप का प्रस्ताव किया जाता है जिसका उद्देश्य शोध समस्या का एक अंतरिम समाधान टेंटेटिव सॉल्यूशन प्रदान करना होता है। दो शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथीसिस शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम से भिन्न होती है। ऐसे तीन प्रमुख अंतरों पर बल डाला गया है। तीन शोध प्रकल्पना की कुछ कसौटियाँ क्राइटेरिया भी है जिनके आधार पर एक अच्छी शोध प्रकल्पना की पहचान संभव है। ऐसी आठ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। चार शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस के कई प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे साधारण प्रकल्पना, जटिल प्रकल्पना, सार्वत्रिक प्रकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, अस्तित्वात्मक प्रकल्पना, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, शोध प्रकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल प्रकल्पना, नल हाइपोथेसिस तथा सांख्यिकीय प्रकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। पैराग्राफ चेंज। पाँच प्रकल्पना के तीन प्रमुख कार्य प्राइमरी फंक्शंस हैं जिनका उल्लेख किया गया है।